ऐसा ही प्राणी मात्र के भीतर भी आत्म तत्व विद्यमान है, ऐसी दृष्टि प्रारंभ में बहुत अनिवार्य है। उसके साथ फिर पूज्य पुरुषों के प्रति विनय, अपने आचरण में निर्मलता, कषायों की मंदता या व्रत नियमों का पालन, निरंतर अपने उस आत्मस्वरूप को जानने का प्रयत्न और संसार बढ़ाने वाले राग द्वेष विषय कषाय इन सबसे विरक्ति, ये सारी चीजें एक साथ अपने आप ही दर्शन विशुद्धि होने पर प्रकट होने लगती हैं। ये हम लोगों ने पिछले दिनों समझने की कोशिश की है। एक एक भावना अपने में पूर्ण है, यदि उसमें हर भावना अपने और प्राणी मात्र के कल्याण के विचार से समन्वित है तो आज हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शक्ति प्लस त्याग भी एक भावना है जो हमारे जीवन को तीर्थंकर जैसी ऊंचाई देने में कारण बन सकती है। हमने ग्रहण करना तो सीखा है अनादिकाल से, पर ग्रहण में जब बाधा आने लगती है तो कुछ चीजें छोड़ भी देते हैं, या ये कहा जाए कि ग्रहण के लिए कुछ थोड़ा विसर्जन अनिवार्य जान पड़ता है, इसलिए मजबूरी वश वह करना पड़ता है। ऐसा त्याग या ऐसे त्याग करने की जो भावना है वो हमारे जीवन को ऊंचा नहीं उठाएगी। मजबूरी वश किया गया त्याग नहीं है। जितना पेट में समा सकता था उतना खा लिया और उसके बाद कोई कहे कि बाकी शेष मैंने सब त्याग किया, तो भैया जी त्याग हमारे परिणामों को निर्मल कैसे करेगा? वास्तव में तो त्यागो विसर्गा। पदार्थों को सहर्ष छोड़ देने का नाम त्याग है। जिस त्याग में अहंकार और संक्लेश दोनों नहीं है वो त्याग श्रेष्ठ है। जेरस या तेरस वेरस लागे, उन क्षणों में ये त्याग घटित होता है जब हमें उस पदार्थ की वास्तविकता का बोध होता है और हम सहर्ष ही उस पदार्थ से अपने आप की आसक्ति को समेट लेते हैं। कल तक जिन वस्तुओं में हमारी आसक्ति होने से वे हमें हितकारी लाभप्रद जान पड़ती थी, उनमें हमें रस मालूम पड़ता था, अपने भीतर का जो आत्म आनंद रूपी रस है उसके प्राप्त हो जाने पर वह जो बाह्य रस है वो बेरस मालूम पड़ने लगे और छूट जावे, तो समझना कि हमारे जीवन में अब वो त्याग की भावना घटित हो गई। ऐसे वाले त्याग में न संक्लेश है न अहंकार है। हम जो त्याग करते हैं उसमें तो संक्लेश भी दिखाई पड़ता है कभी कभी, और कभी त्याग करने का अहंकार भी अपने भीतर आ ही जाता है। उससे बच करके कोई त्याग हो सकता है क्या? आदत तो नहीं है वैसा त्याग करने की, लेकिन जो ऐसा त्याग करेगा वो ही अपने और प्राणी मात्र के कल्याण करने वाले उस तीर्थंकर पद को प्राप्त करेगा। घर में कचरा इकट्ठा हो जाने पर मुंह अंधेरे सुबह सुबह उठा करके बाहर फेंक आते हैं, भैया आज तक अपने घर को कचरा फेंकते समय कोई ने फोटोग्राफर को बुलवाया होवे कि अपनो नाम लिखवा होवे कि भैया जो इतनो फेंको हमने कल तो एक ही टुकनिया फेंको तो आज तो देखो दो हम फेंक रहे हैं। हमारे ख्याल से तो अपने घर में जो मलिन वस्तुएं संचित हो जाती हैं जिन्हें हम व्यर्थ समझते हैं उन्हें हम जैसे छोड़ देते हैं बिना किसी से कुछ बताए, और जिसके छोड़ने में कोई संकलेश भी नहीं है, दोनों ही चीजें। मैंने छोड़ा इसलिए मुझे उसका सम्मान मिले, या मैंने इतना त्याग किया है ऐसा अहंकार भी मेरे भीतर ना आवे और मुझे छोड़ना पड़ा, ये सब वस्तुएं तो मुझे अत्यंत प्रिय थीं, मजबूरी में छोड़ना पड़ा, संकलेश हो रहा है, यह भी त्याग नहीं है। त्याग तो हम उस चीज की वास्तविकता जान करके उसकी व्यर्थता जान करके उसे हम सहर्ष छोड़ देते हैं, हर्ष विषाद नहीं करते हैं, तब वो त्याग घटित होता है। हम सबके घर में चार कमरे सब प्लान करते हैं, दो कमरे भी हों तब भी उसमें ही चारों बातें प्लान हो जाती हैं, ऐसा मत समझना कि चार हुई हैं, जब ही एक भी जिसके पास है उसमें भी वो चारों चीजें प्लान होती हैं, चार ही जरूरतें होती व्यक्ति के। एक ड्राइंग रूम बनाते हैं, ड्राइंग रूम में अपनी तमाम उपलब्धियां, प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफी, मेडल, जो भी श्रेष्ठ उपलब्धियां हैं जीवन की, वे सब सजा करके रखते हैं। जो आता है उसे जरूर दिखाते हैं। वो कमरा सबके आने जाने के लिए है। एक और कमरा प्लान करते हैं जिसे बेडरूम कहते हैं, उर्दू में जिसका नाम ख्वाबगाह है, जहां हम अपने भावी जीवन के सपने देखते हैं, साकार कभी नहीं होते लेकिन सपने देखते हैं। वहां हम सबको नहीं जाने देते, वो तुम्हारे परिवारजन ही वहां जा सकते हैं, ड्राइंग रूम तक सब आ सकते हैं, बेडरूम में तो हमारे परिवारजन ही रहेंगे, वहां हम भावी भोगों की आकांक्षाओं के चलते अपनी सुख सुविधा के लिए बहुत सपने देखते हैं। और एक कमरा होता है जिसमें बैठकर भोजन करते, किचन कहलाता आज की भाषा में, संस्कृत में उसे क्या बोलते हैं, सिद्धान, रसोई घर, जहां अन्न सिद्ध होता है, पकाया जाता है, वो भी है। वहां मालूम पड़ता है कि व्यक्ति की अपनी हैसियत क्या है। ड्राइंग रूम से कभी किसी की हैसियत आंकने की कोशिश मत करना, आज तो उसी से व्यक्ति की हैसियत मापी जाती है कि कितनी सजावट वाले कमरे में अतिथि को बिठा लिया गया था। अगर वास्तविकता जाननी है तो उसके किचन में जाकर के देखना चाहिए कि खाने का ढंग क्या है, क्या खाता है, किस तरह से खाता है। ये भी कमरा एक प्लान किया जाता। और चौथे नंबर का है जो सबके यहां होता है, जितना आल जाल जिसे फेंका भी नहीं जा सकता और काम में भी नहीं आता, वो रखा रहता है। वर्षों वर्षों गुजर जाते, कभी काम नहीं आता लेकिन फेंका भी नहीं जा सकता, छोड़ा भी नहीं जा सकता। जीवन में भी ऐसे ही चार कमरे अपने भीतर भी हैं। एक वो जिसे हम सबको दिखाते हैं अपनी उपलब्धियों को, एक वो जब हम जिसमें बैठ करके अपने भोगों के लिए सपने देखते हैं, एक वो जिसमें जीवन यापन के लिए कुछ थोड़े से भोजन इत्यादि जो अनिवार्य तत्व हैं उनको ग्रहण करते हैं, और भी एक है जिसमें हम खुद भी वर्षों झांक के नहीं देखते। जैसे कि तीन कमरों में तो आना जाना होता है, चौथे में तो जब दीपावली आती तब सामान खिसका के थोड़े होते ही पोत के होते ही खिसका के फिर धर दे। जीवन में हमारे भी उस जगह हम झांक के नहीं देखना चाहते जहां कषायों का कचरा पड़ा हुआ है, जहां दुर्भावनाओं का कचरा मेरे भीतर पड़ा हुआ है, वहां मैं वर्षों क्या पूरी जिंदगी भी नहीं झांकना चाहता। वास्तव में त्याग तो उसी के घटित होता है जब वो अपने भीतर की मलिनताओं को, अपने भीतर की कमजोरियों को समझ करके उन मलिनताओं से, उन विषय कषायों के कचरे से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करता है तब वह त्याग जीवन में घटित होता है। एक ऐसी पवित्र भावना जिसमें कि मैं अपनी ही मलिनताओं को छोड़ूं, अपने ही राग द्वेष और विकारी भावों को छोड़ूं, ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है। वास्तव में त्याग वही है। उस त्याग के लिए फिर हम अपनी आसक्ति का त्याग करने के लिए जिन बाह्य वस्तुओं में हमने अपनी आसक्ति आरोपित कर रखी उन वस्तुओं को छोड़ते हैं, ताकि मेरे भीतर की तज्जन आसक्ति घटे। वस्तुओं का त्याग बाद में घटित होगा या पहले घटित होगा ये भेद नहीं है, दोनों एक साथ घटित होते हैं, होना चाहिए। इधर भीतर की आसक्ति का त्याग हुआ, कहते कि भाई जितनी विरक्ति उतना त्याग, जितनी भीतर से आसक्ति घटती है बाहर में वस्तुओं का भी उतना ही त्याग घटित होता है। सहर्ष हम उन वस्तुओं को दूसरे के लिए छोड़ देते हैं, दे देते हैं या छोड़ देते हैं, दोनों ही हैं। दे देते हैं परोपकार की भावना से, छोड़ देते हैं सिर्फ अपना उपकार है। यहां तीर्थंकर जैसी ऊंचाई पाने वाली भावना में तो लोभ को उपकारी त्याग की घटना घटित होती है जीवन में। एक ऐसा त्याग जिससे कि अपना और प्राणी मात्र का उपकार हो, ऐसा त्याग। और शक्ति तस शब्द जोड़ के रखा है, यथा शक्ति अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे, वहां शक्ति का क्या अर्थ है? अपनी आवश्यकता का विचार करके अपनी आवश्यकता से अधिक होने पर शेष का त्याग करने में कोई भी संकलेश नहीं हो सकता। और अपनी आवश्यकताएं और अपनी आसक्ति बढ़ा करके और फिर उसके बाद यदि हम त्याग करते हैं तो संकलेश की संभावना है। दूसरे को अपनी वस्तु देते समय संकलेश ना हो और ना ही ऐसा भाव हो कि मैं देने वाला हूं। देने वाला कीमती कभी नहीं होता, ये ध्यान रखना। हमेशा जिसने ले लिया है, जिसने आपके देने को सार्थक बनाया है, वो बड़ा है। इसलिए पहले जो कोई घर में विप्र ब्राह्मण भिक्षा के लिए आया करते थे तो भिक्षा के साथ साथ दक्षिणा दी जाती थी। दक्षिणा दी जाती थी मतलब क्या? दक्षिणा का अर्थ है उपकार माना जाता था कि आप ले लिया, ये आपका उपकार, आप इनकार कर देते तो मैं ये दान मेरा तो व्यर्थ हो जाता। इसलिए दान भी दिया और साथ में दक्षिणा दे दी, अर्थात उपकार को स्वीकार कर लिया कि आपने ग्रहण करके बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर। आज तो हम देने की तो भावना नहीं होती, देने की भावना से पहले पूछ लेते हैं कि काय दे है सुक्का का मिल है, हमारा नाम भूल है कि नहीं, महाराज से हमारे मूर पे पिछी धरवा हो कि नहीं, हम दें तो देते हैं, और रसीद कट्टा छपे हैं कि नहीं, बेब बेब हमारे नहीं तो हम कैसे दे हैं, कहां हमारा पैसा कर हो तुम, सो रसीद कट्टा हो पहले रसीद बना दो हमारी फिर दे। अरे भाई रखा तो जाता है गिन गिन के, छोड़ा नहीं जाता गिन गिन के, वो छोड़ना नहीं कहलाता। एक बार गांठ खोली जाती तो फेंक दिया जाता, फिर ये नहीं गिना जाता कि हमने 2 रुपया दे कि हमने 5 दे, अच्छो भाव के दे दे। जब आसक्ति घटती है तब ये त्याग घटित होता है, वरना नहीं होता घटित। वरना तो संक्लेश और अहंकार दोनों ही त्याग के पीछे स्पष्ट दिखाई देते हैं। अधिकांश 99% आज वर्तमान में होने वाले त्याग में यही चीज दिखाई पड़ती है, या तो संक्लेश है या अहंकार। अपने अहंकार की तुष्टि के लिए नहीं, ऐसा त्याग मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। वो लौकिक हो सकता है, थोड़े से पुनर्जन का कारण बन सकता है, लेकिन कर्मों की निर्जरा का कारण तो वो त्याग है जिसमें संक्लेश अहंकार नहीं है, बल्कि उस वस्तु की व्यर्थता जान पड़ी थी इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, दूसरे के उपकार के लिए हमने उससे त्यागा है, तो ध्यान देना पड़ेगा कि फिर दूसरे का उपकार किस चीज में होता है। जब एक ऋषि याज्ञवल्क्य राजा के द्वारा सम्मानित किए गए और सम्मान में सैकड़ों गायें, पहले गायें दी जाती थी, गोधन दिया जाता था, आज तो एक गाय भी घर में मिल जावे तो बहुत, डब्बा का दूध है जिसमें विटामिन ए के नाम पर कॉड लीवर आयल मिला रहता, मछली का तेल, लेकिन चलता है। एक गाय कौन पाले, उसकी सेवा कौन करे। तो गोधन दिया गया और भी मोहरें दी गई अपने घर आकर के उन साधु बाबा जी की। दो जीवन साथी थी, वैसे वाले साधु बाबा जी थे जिनके ब्याह भी हुआ था। तो दोनों से कहा कि मैं तो जाता हूं जंगल, ये मेरे सम्मान में राजा ने इतनी संपत्ति दी है, तुम लोग इसको आधा आधा बांट लो। तो छोटी वाली तो तैयार हो गई जीवन साथी, बड़े वाली ने कहा कि जाते हो तो अच्छा है, मेरी दो बातों का जवाब दे दो। कौन सी बात? यदि इस संपदा में सुख है तो इसे छोड़ के जाने की क्या आवश्यकता है, और अगर इस संपदा में सुख नहीं है तो मेरे मत्थे डाल करके जाने की क्या आवश्यकता। जिस संपदा को हम दूसरे को देने का अहंकार करते हैं, क्या वो संपदा दूसरे का अपकार करने वाली तो नहीं है? क्योंकि हमने तो उसे व्यर्थ मान करके ही लिया है। इसलिए संपदा का दान अपने यहां पर पहले शेष नहीं माना, पहले तो रत्नत्रय का दान ही सबसे श्रेष्ठ है। क्या देना? श्रद्धा देना, अपनी श्रद्धा से दूसरे के भीतर श्रद्धा उत्पन्न करना, अपने आत्मज्ञान से दूसरे के भीतर आत्मज्ञान उत्पन्न करना, अपने सदाचरण से दूसरे को चारित्र का मार्ग दे देना, वास्तव में तो यह दान है जो लोकोपकारी है। आज वर्तमान में इस दान की प्रशंसा कोई नहीं करता। आज तो अगर किसी से कहें कि आपको कुछ धन पैसे का त्याग करना है तो साथ में व्रत नियम इत्यादि ले लो, तो जरा भारी मालूम पड़ता है। पहले आचार्य महाराज का मुझे ध्यान है 1976 में किसी ने ला करके उनको एक लिखने के लिए डायरी रख दी, तो आचार्य श्री कहते कि अच्छा मैं इसे स्वीकार कर लूं। मैंने कहा महाराज आपके लिए लाया हूं तो मेरे से क्या लोगे, आप जो देंगे महाराज। तो एक नियम तो लेना पड़ेगा, एक डायरी हमने आपसे ली अपने काम के लिए, तो एक नियम आप हमसे ले लो आपके काम के लिए। और अगर दो देना चाहो तो दो नियम ले लो। और हम तो कहते हैं कि और ज्यादा दो ताकि ताकि और ज्यादा नियम, हर एक चीज का एक एक नियम दे। बताइए परस्पर, कहते पर प्रीति करनात अतिसर्जनम त्याग, दूसरे की प्रीति बढ़ाने के लिए या परस्पर प्रीति भाव व्यक्त करने के लिए जो दिया जाता है वो है वास्तव में दान या कि त्याग। एक दूसरे के लिए उपकारी होना चाहिए, और एक दूसरे का उपकार कैसे होता है, परस्पर धर्म और धर्मात्मा के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाती है, देने वाले के प्रति और जिसने लिया है उसके प्रति, क्योंकि ग्रहण करने वाले ने स्वीकार कर लिया। मैं तो रोज देखता हूं, कई बार जो है किसी बच्चे के हाथ में पेंसिल दो, इनकार कर दे तो धरे ना वो अपनी, कछु काम की नहीं है, है हमारे पास वो कह दे, कैसा लगता है उन क्षणों में कि जैसे मेरा व्यर्थ हो गया सब, मेरे पास होना। इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए अपने को कि देते समय भी सद्भाव है और ग्रहण करने वाला भी उतने ही सद्भाव से ग्रहण कर रहा है, अगर तब ये ग्रहण और त्याग दोनों का संतुलन सपर कल्याण में कारण बनता है। भैया प्रति उपकार की भावना से न देना, न प्रति उपकार की भावना से ग्रहण करना। मैं तो ये भी कहूंगा कि ग्रहण करने वाला सावधान रहे, कोई देता हो तो सहसा ग्रहण ना करे, परीक्षा कर ले वे उसकी कि ये देने योग्य है या नहीं है, तब मैं इससे लूंगा, मैं इसके दान को तभी सार्थक करूंगा जब इसके अंदर वो योग्यता और पात्रता होगी। अभी तो हम ये सोचते हैं कि देने वाला तो चाहे जैसा भी हो वो तो दे रहा है इसलिए पात्र ही है, लेने वाले की परीक्षा करो कि वो है कि नहीं देने लायक। ये अपन लोग करते हैं। होना तो ये चाहिए कि जो दे रहा है उसके गुण देखना चाहिए, जो ग्रहण कर रहा है उसके गुण तो देखते ही अपन, लेकिन जो दे रहा है उसके भी गुण देखना चाहिए कि उसके भीतर अगर वास्तव में हम इस त्याग की प्रक्रिया को ठीक करना चाहते हैं तो कम से कम जिससे हम कोई भी दान स्वरूप राशि ग्रहण करें उसके तीन नियम तो श्रावक के होना ही चाहिए, सप्त व्यसन का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग और देव दर्शन। ये तीन नियम होंगे तभी आपके द्वारा दी गई कोई भी वस्तु मैं स्वीकार करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। फिर देखिएगा कि जो त्याग घटित होगा वो सबर कल्याण के लिए होगा, जो जिसको दिया जाएगा उसके जीवन का भी उत्थान करेगा, और जिसने दिया है उसके जीवन का उत्थान तो देते ही साथ हो गया, क्योंकि उसने देने से पहले ये संकल्प कर लिया। अभी लोग इस बात की शुरुआत तो कर रहे हैं आपके यहां पर, आपके यहां पर और जगह तो शुरुआत हो चुकी है, आपके यहां पर अभी दो तीन लोगों ने ऐसी शुरुआत कर दी। हाँ, कि देने के साथ साथ नियम तो लूंगा कि रात्रि भोजन का त्याग, देव दर्शन का नियम और सप्त व्यसन का त्याग, तब आपका कोई भी सहयोग स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा आपके सहयोग की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर हम इस तरह से भावना अपने भीतर डेवलप करें तो फिर देखिएगा कि कैसे नहीं हमारा जीवन और आसपास का परिवेश कैसे अच्छा नहीं बनता है। ऐसा त्याग, ऐसा दान ही, दान के कई रूप अपने यहां पर हैं। हम हमारे पास ज्ञान है तो ज्ञान दें, ज्ञान के साधन है, उपकरण है तो वो हम दें, पठन पाठन जो भी है हमारे पास, शास्त्र है हम वो दें, हमारे पास एक जून का भोजन किसी के देने योग्य हम वो दें, हमारे पास अगर उपचार की विद्या है रोगों के तो हम वो दें, औषधि दान हो गए। ना दे सकें कुछ तो कम से कम दूसरे को निश्चिंतता तो दे दें भैया, कि हमारी तरफ से निश्चिंत रहो जीवन भर, ये अभय दान देना तो बहुत बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। आज तो पड़ोसी से पड़ोसी खतरे में जान पड़ता है, हम निश्चिंतता नहीं दे पाते दूसरे को कि निश्चिंत रहो। प्राणी मात्र को हम ये कह सकें कि हमारे जीवन से आपकी क्षति नहीं होगी, आपका अहित नहीं होगा, मैं ये निश्चिंतता देता हूं आपको, ये है अभय दान। अकेले चार ठो कमरा की एक बिल्डिंग बना के हमने धर्मशाला बनवाई लोगों के ठहरवे के लाने बनवाई हुई है जी। अकेला आवास दान ये नहीं कहलाता, निश्चिंतता देना अभय दान वो श्रेष्ठ दान है। अब सारी चीजों के जो अर्थ थे वो धीरे धीरे अपन ने जो आंतरिक अर्थ था वो तो भूल गए, जो उसके बाह्य रूप थे वे आज सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। सो बाह्य रूप बुरा नहीं है, लेकिन बाह्य रूप अगर अंतरंग के साथ में होवे तो फिर देखिएगा कि उसका क्या आनंद आता है। हृदय में जगह होवे तो कमरा में जगह निकल आती है, वरना तो कमरा सैकड़ों बनवा लो, हृदय में किसी के प्रवेश करने के लिए जगह न होवे तो वे बने भाई 100 कमरा भी आपके व्यर्थ ही है, ये ध्यान रखना। और कभी भी त्याग के समय जो हमने दिया है दूसरे को, उससे कभी भी उस दिए हुए के बदले में किसी प्रति उपकार की भावना नहीं रखना। ईश्वर चंद जो कि बंगाल में प्रसिद्ध हुए, ईश्वर चंद विद्यासागर नाम था उनका, साधन है उपकरण है तो वो हम दें, पठन पाठन जो भी है हमारे पास, शास्त्र है हम वो दें, हमारे पास एक जून का भोजन किसी के देने योग्य हम वो दें, हमारे पास अगर उपचार की विद्या है रोगों के तो हम वो दें, औषधि दान हो गए। ना दे सकें कुछ तो कम से कम दूसरे को निश्चिंतता तो दे दें भैया, कि हमारी तरफ से निश्चिंत रहो जीवन भर, ये अभय दान देना तो बहुत बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। आज तो पड़ोसी से पड़ोसी खतरे में जान पड़ता है, हम निश्चिंतता नहीं दे पाते दूसरे को कि निश्चिंत रहो। प्राणी मात्र को हम ये कह सकें कि हमारे जीवन से आपकी क्षति नहीं होगी, आपका अहित नहीं होगा, मैं ये निश्चिंतता देता हूं आपको, ये है अभय दान। अकेले चार ठो कमरा की एक बिल्डिंग बना के हमने धर्मशाला बनवाई लोगों के ठहरवे के लाने बनवाई हुई है जी। अकेला आवास दान ये नहीं कहलाता, निश्चिंतता देना अभय दान वो श्रेष्ठ दान है। अब सारी चीजों के जो अर्थ थे वो धीरे धीरे अपन ने जो आंतरिक अर्थ था वो तो भूल गए, जो उसके बाह्य रूप थे वे आज सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। सो बाह्य रूप बुरा नहीं है, लेकिन बाह्य रूप अगर अंतरंग के साथ में होवे तो फिर देखिएगा कि उसका क्या आनंद आता है। हृदय में जगह होवे तो कमरा में जगह निकल आती है, वरना तो कमरा सैकड़ों बनवा लो, हृदय में किसी के प्रवेश करने के लिए जगह न होवे तो वे बने भाई 100 कमरा भी आपके व्यर्थ ही है, ये ध्यान रखना। और कभी भी त्याग के समय जो हमने दिया है दूसरे को, उससे कभी भी उस दिए हुए के बदले में किसी प्रति उपकार की भावना नहीं रखना। ईश्वर चंद जो कि बंगाल में प्रसिद्ध हुए, ईश्वर चंद विद्यासागर नाम था उनका, एक बार मार्ग से चले जाते थे, रास्ते में पेड़ के किनारे एक दीनहीन व्यक्ति को बैठे देखकर रुक गए। हमारे ख्याल से फुर्सत होंगे वो, इसलिए अपन को तो काम बहुत रहते कि को बैठो है को दीनहीन है, को का फुर्सत थोड़ी, अपन को तो काम भी फुर्सत हुई है देख करके कि ये उदास और वृक्ष के नीचे क्यों बैठा हुआ है। पास में जाके बैठ गए, भाई कोई दुख है तुम्हें क्या? कहते क्या करोगे जान करके, बहुत लोग पूछते हैं लेकिन दुख दूर तो कोई नहीं करता। वो बात भी सही है, अगर आपको की तबीयत खराब हो जावे तो सलाह देने बहुत आ जाएंगे कि तुम ऐसा कर लो और ऐसा कर लो, लेकिन जाहे दवाई और सिर पे हाथ फेर करके जो उसकी विधि है वैसा अपना समय निकाल के कोई देता है करता है? कोई नहीं करता भैया। वर्तमान में तो किसी भी प्रकार से बस प्रशंसा मिलनी चाहिए जो भी मैं करूं उसकी, यही प्रक्रिया है। चाहे त्याग की दान की प्रक्रिया भी क्यों ना हो, उसमें भी यही चीज हमारे जुड़ गई है कि जिसमें हमें कुछ प्राप्त हो, गिव एंड टेक, कुछ प्राप्त होना चाहिए तब तो मैं दूं, नहीं तो देने का मतलब क्या है। लेकिन ईश्वर चंद ने कहा कि मुझे अपना दुख तो कहो, मैं जानता हूं कि दुख कहने से अकेले उपाय नहीं होगा, लेकिन कहे बिना भी कैसे मालूम पड़ेगा, इसलिए कहो शायद मैं कुछ कर सकूं। कहते और कुछ नहीं, मेरे अपने विपत्ति का समय है, मेरी सारी संपदा तो जा चुकी, अकेला मकान शेष रहा, वह भी मैंने गिरवी रख के अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, अब उसकी भी तारीख लग गई है, दो दिन शेष रहे हैं, अगर मैं 3,000 रुपए नहीं चुका पाऊंगा तो वह मकान भी फिर मेरा नहीं रहेगा, उसकी भी नीलामी हो जाएगी। इतनी बड़ी विपत्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति है ये जानकर ईश्वर चंद बिना कुछ कहे चले गए। उन्हें जाता देख करके वो कहता कि मैं तो पहले ही जानता था कि सुन तो सब लेते हैं, लेकिन उस दुख को दूर करने को तो कोई नहीं करता है। और बड़े भारी कदमों से घर वापस लौटा, दूसरा दिन हुआ, तीसरे दिन तो बहुत चिंतित था कि बस आते ही होंगे नीलामी वाले लोग और कहेंगे कि निकालो सब सामान अपना बाहर और छोड़ो घर, लेकिन सुबह से कोई नहीं आया, दोपहर हो गई, सोचा कि तारीख में कुछ अंतर हो गया होगा, पता करना चाहिए, जाकर के पता किया कि भाई मेरे मकान की नीलामी की तारीख यही थी ना। उन्होंने कहा हां भाई यही तो थी, तो कहते वह तारीख तो निकल गई, मेरे मकान को नीलाम करने कोई नहीं आया। कहते भाई क्यों आएगा, तुम्हारे तो 3,000 रुपए भरे जा चुके हैं, अब क्या आवश्यकता है तुम्हारे मकान के नीलाम होने की। अरे किसने भरे? बोले ये तुम जानो। अब उससे लगा कि हो ना हो वही पुरुष होंगे, महापुरुष जो कहते थे कि मुझे कहो तो शायद मैं मदद कर सकूं। अब उन्हें कहां ढूंढूं, नाम पता भी नहीं बताया, यहां तो पहले नंबर पता लिख लो, नंबर फोन नंबर लिख लो, हम आओ रसीद पे नाम पूरे मैं बाल बच्चों तक को दो दो पीढ़ी तक को कि इनके अपने इनके क्या उसको हमें ख्याल तक नहीं आ रहा, बहुत सारी परिवार इतनी बड़ी लिखते हैं वो, हम तो पढ़ते कभी कभी कि इनके उपलक्ष में और इनके द्वारा और इनके प्रपोत्र के द्वारा दिया गया, ले दादाजी से लेकर तीन पीढ़ी तक को नाम लिखोगे फिर उनके प्रपोत्र भी हो गए वही में लगी रहती, वो तो भगवान के दर्शन करो आप और तन्नक दृष्टि नीचे गई से वो पटिया दिखा जाने होता ही कि जब बेदी इनने बनवाई थी फलाने चंद की स्मृति में फलाने चंद के इनने और उन इनके बेटे ने और फिर उनके नाती ने। अब बताइए आप, ये त्याग कहलाएगा? ये तो त्याग नहीं है। कहलाता होगा संसार में त्याग, मोक्ष मार्ग में ये त्याग तीर्थंकर जैसी ऊंचाई देने वाला तो कदापि नहीं है। भले ही आपने तीर्थंकर पधरा दिए हों, लेकिन आपके जीवन में वो तीर्थंकर पना तो इतने मात्र से नहीं आ सकता। अब वो ढूंढता है कि कहीं मिल जाए वो महान आत्मा, और एक दिन रास्ते में दिखाई पड़ते कि अरे वो चले जा रहे, भागा भागा जाता, चरणों में गिर जाता कि आपने मेरा इतना उपकार किया और आपने किसी से कुछ भी नहीं कहा। तो एक तरफ ले जाती ईश्वर चंद उसको, कहती धीरे बोलो, अगर तुम्हें मेरे ऊपर कुछ उपकार करना हो तो इतना ही करना कि इस बात को किसी से मत कहना कि ये रुपए किसने चुकाए थे, मेरा नाम किसी को नहीं बताना। अब बताइएगा, ऐसे लोग वास्तव में त्याग करते हैं और उनका त्याग उनके जीवन को ही नहीं दूसरे को भी प्रेरणा देता है, उनकी सद्भावना दूसरे के भीतर भी सद्भावना उत्पन्न करती है। भैया त्याग तो जो लोकोपकारी है वो ऐसा ही हो कि हमारी भी विशुद्धि बढ़े और जिसे दिया गया है, जिसने प्राप्त किया है, उसकी भी विशुद्धि बढ़े, तब जाकर के हमारा जीवन अच्छा बनेगा। इसी भावना के साथ कि हमारे जीवन में अपनी यथाशक्ति त्याग करने की ऐसी निर्मल भावना उत्पन्न हो जिससे हमारा वो प्राणी मात्र का कल्याण हो। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज
की। गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जब जग विषय में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ, शिव के निशकंटक पथ में निशकंटक होता हो, तुम तर चुपतम